प्रवचन सार, प्रवचन सुधा, भाग एक, लेक्चर नंबर 17। ओम नमः सिद्धेय, ओम नमः सिद्धेय, ओम नमः सिद्धेय, ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये
सौवसाहुणम्।
सुरसुरनरपतिवन्द्यने प्रविनष्टगाति कर्मणे, प्रणमन करूधर्मकर्ता तीर्थ श्री महावीरने, वरिशेषतीर्थङ्करने सौ सिद्धशुद्धासीत्वने, मुनि ज्ञान दृगचारित्र तपवीर्या चरण संयुक्तने, ते सर्वने साधे तथा प्रत्येकने प्रत्येकने वंदु वळी मनुज क्षेत्रे वर्तता
अरहंतने, अरहंतने सा सिद्धने नमस्करण करिये रीते, गणधरने अध्यापकने सर्वसाहु समूहने, तस शुद्ध दर्शन ज्ञान मुख्य पवित्र आश्रम पामिने, प्राप्ति करू साम्य निजे नाति शिव प्राप्ति बने।
श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव प्रणीत यह प्रवचन सार नामक ग्रंथ है। उस पर श्रीमद् अमृतचंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका नामक टीका लिखी हुई है और श्री जयसेनाचार्य ने तात्पर्य वृत्ति टीका लिखी है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं वो प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। उसमें से ये पहली पुस्तक है, भाग एक, और उसके हम पृष्ठ संख्या 85 पर आ गए, 85। ये पुरानी एडिशन में 85 है और उसमें हम तीसरा पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। गाथा 11 का वो प्रवचन चल रहा है। आप में पेज नंबर बराबर है। हाँ, ऋषभदेव भगवान ना समय में 4000 राजाओं साधु थे। देखा देखी, इन्होंने दीक्षा ली तो उन्होंने भी ले ली। तेओ नग्न वेश राखी ने बीजू काई करवा मंडिया, क्योंकि मुनि धर्म क्या होता है उनके आचार विचार कुछ पता नहीं था। इन्होंने तो ले ली, उसके साथ उन्होंने देखा देखी ले ली। उनके तो मौन होता है और वो तो आहार के लिए निकले नहीं थे, इनको पता नहीं क्या करना क्या नहीं करना है ना। तो कहते कि तेओ नग्न वेश राखी ने बीजू कहीं करवा मांडिया, त्यारे स्वर्गना देवो आवीने कहूं कि आ वेश छोड़ी दो नहींतर दंड आपशो। मुनि वेश धारण करके शिथिलाचार या अन्यथा अगर आप आचरण करेंगे तो वो नहीं चले, नग्नपणु छोड़ी दो, पछी तमे गमे ते करो, पर नग्नपणु राखी ने तमे ऊंधी प्ररूपणा करशो आउ करशो तो नहीं चाले।
देखो, हमने संयम प्रकाश नाम का एक शास्त्र अपने पास है, वो संयम प्रकाश शास्त्र मुनियों के बारे में भी बताया है और श्रावकों के बारे में भी बताया है। उसमें तो ये अभी अभी करीबन 50-100 साल पहले ये पब्लिश हुआ है और वो भी किसी मुनि ने ही लिखा है, और उन्होंने तो ऐसा लिखा है ये तो प्रत्येक श्रावक का कर्तव्य है, अगर कोई मुनिराज कोई गड़बड़ करते हैं तो उनको समझाना। और यही बात यहाँ पर गुरुदेव श्री बता रहे, ये कब की बात है, आज की नहीं, एक कोड़ा कोड़ी वर्ष पहले।
ये तो प्रथमान युग में लिखा हुआ है कि देव आकर उनको, उन राजाओं को बताए कि तुम ये ऐसी बातें नहीं चलेगी, आपको दंड मिलेगा उसका।
क्या कह रहे, नग्नपनु छोड़ी दो, नग्नपनु धारण करके आप ऐसा कुछ उलट पुलट कार्य कर रहे हैं। क्योंकि क्या है, उनको तो मालूम नहीं था आहार कैसा खाने का, नहीं तो झाड़ के फल निकाल के खाने को चालू किए। फिर आस्ते आस्ते वलकल पहनने लगे, वलकल ने पन्ने झाड़ के पन्ने कुछ उसके,
हाँ,
हाँ। अन्य
अनेक वो अन्यथा प्ररूपना चली, हाँ। कुछ मालूम मत ही अपने मन कल्पना से कुछ भी करने लगे, तो कहते ये तो मुनि दिगंबर मुनि मान रहे और ऐसे कुछ शिथिलाचार या उल्टा कुछ कर रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। त्यारे वो काल हतो, अत्यारे तो क्या देव 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 मरे, देव मैंने स्वर्ग मरे, भगवान भगवान पासे रहे। अहीं कहे छे के शुद्धोपयोग आ कारणे शुद्धोपयोग उपादे छे, कया कारणे के समय दर्शन चारित्रना परिणाम वाला ने पण जो शुद्धोपयोग हो तो ते मोक्षनु कारण छे। अने ते दर्शन ज्ञान चारित्रना परिणाम होवा छता जो तेने शुभोपयोग नु जोड़ान थाय तो ते स्वर्गना बंधनु कारण थाय, आ कारणे शुद्धोपयोग ते उपादे छे। बिल्कुल विथ रीजनिंग जो कहेंगे कि क्यों उपादे, आपने कहा इसलिए नहीं, तो उसका फल क्या मिलता है, उसके बाद सोच कर ये बात बताए। ये हमको निर्णय करना है, शुभोपयोग आता है उसकी बात है ही नहीं, वो पर्याय में है, परंतु उस समय नक्की क्या करना है, ये है, ये है छोड़ने लायक है और ये छोड़कर अंतर में स्थिर होने लायक है।
देखो अभी हम देवलाली में मई महीने में शिविर लिए थे, उस समय दो बहनें मेरे हिसाब से अहमदाबाद से आई थी, उनका ये मुझे प्रश्न था कि मुनि नग्न ही क्यों रहते हैं, ऐसा उनका हाँ, सवाल था।
जामनगर वाली आई,
कहाँ के मालूम नहीं, तो मैंने कहा हम उत्तर देंगे आपको लेकिन जब टाइम आएगा, चारित्र उनकी बात जब चलेगी, जब ये बात बताएंगे, बीच में उठ के बोलेंगे तो नहीं चले, वो हमारी रिवाज नहीं, तो पूछे और दूसरे दिन वापस चले गए और आखिर के दिन हमने बता दिया।
देखो क्या कहते हैं, यानी वहाँ शुद्धोपयोग क्यों उपादेय है और शुभोपयोग क्यों है, यह है क्योंकि शुद्धोपयोग का फल क्या है, मोक्ष, और शुभोपयोग का बंध, और यहाँ चारित्र की बात है, चारित्र वाला वितराग परिणति वाला है, इसलिए स्वर्ग की प्राप्ति, जो लोगों में तो वो बहुत अच्छा अच्छा मानते हैं, तो कहते वो भी क्लेश है, वो भी दुख है, वो सुख नहीं है। भावार्थ, जेम घी स्वभावे शीतलता उत्पन्न करना रू हुआ छता, घी का स्वभाव क्या है, शीतल है, घी स्वभावे तो ठंडू छे पण गरम घी थी दजाय छे, ऊनू घी थाय तो दजाय छे, तेम चारित्र स्वभावे मोक्ष करनारू होवा छता, चारित्र स्वभावे मोक्ष करनारू होवा छता सराग चारित्र थी बंध थाय छे। सराग चारित्र ने चारित्र वाले जीव को जो अभी राग बाकी है उससे बंध होता है, पण जो ते चारित्र शुभ राग वाळू होय तो बंध थाय छे, अने जेम ठंडू घी शीतलता उत्पन्न करे छे तेम वीतराग चारित्र साक्षात मोक्षनुं कारण छे। वीतराग चारित्र ने अंतरंग में स्थिरता, वीतराग भाव, शुद्ध उपयोग, तेनी पहला ओळखाण तो करे प्रभु, श्रद्धा तो करे, ओळखाण तो करे के मार्ग आचे, इसकी बात किसी ने सुनी नहीं होती, ये शुद्ध शुद्ध क्या होता है ऐसा कहते हैं, ये शुद्ध भाव क्या होता है, क्योंकि इतना ही मालूम है कि कोई क्रिया करना, और क्रिया करने से धर्म, वो तो परिणाम जुदा है क्रिया जुदा, इसका भी कोई विचार नहीं है, बस ये मैं इतने व्रत के, अभी इसके ऊपर के व्रत करेंगे, उसके ऊपर के हम मुनि दीक्षा लेंगे, फिर वही मोक्ष का कारण मान लिया, क्योंकि जीवों के ऐसी कल्पना हो रही है ना, तो कहते इसलिए पहले में पहले ओळखाण तो करे कि मार्ग आछे, समझाणु कहें ए 11 गाथा थई। हवे चारित्र परिणाम साथे संपर्क विनानो हुआ थी जे अत्यंत है ये छे, जोयूं अशुभ उपयोग अत्यंत है ये छे तेम कहूं, वहां तो शुभ उपयोग को है ये कहा और अशुभ को तो अत्यंत है, उसका तो चारित्र के साथ कोई संबंध ही नहीं है, यानी चारित्र वाले यानी जो मुनिराज है उनके तो अशुभ उपयोग होता ही नहीं है, ये कहना है ना यहाँ पर। हाँ देखो हवे चार, फिर पढ़ती हूँ, चारित्र परिणाम साथे संपर्क विना न हुआ थी जे अत्यंत है छे। जो यूं ये नेक्स्ट गाथा की शायद इंट्रोडक्शन चल रही है क्या? हाँ हाँ हाँ, ये नेक्स्ट भी आएगी। अशुभ उपयोग अत्यंत है ये छे तेम कहूं, हिंसा झूठू चोरी रागादिनो जे अशुभोपयोग छे ए तो चारित्र परिणाम साथे संपर्क एटले संबंध विनानो छे, एटले के जेने सम्य दर्शन सहित चारित्र छे तेने अशुभ भाव होय नहीं। छठे में शुभ भाव है, सातवें में शुद्ध उपयोग है, उनको तो अशुभ होता ही नहीं, ये कह रहे। तेने शुभ भाव होय तो बंध थाय ने स्वर्ग मां जाए, पण तेने अशुभ भाव नो संबंध तो होय ज नहीं। हाँ हाँ, जे मुनि साचा संत छे अने जेमने प्रचुर स्वसंवेदन प्रकट्यु छे, स्वसंवेदन निज आत्मा की अनुभूति, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन। अब जो हेडिंग है उसको पढ़ेंगे। हाँ अच्छा, अर्थात हाँ अच्छा, जो वाक्य आधार रहा था ना, फिर से पढ़ती पीछे के पेज से। जे मुनि साचा संत छे अने जेमने प्रचुर स्वसंवेदन प्रकट्यु छे, हा हा, अर्थात स्वसंवेदन एटले आनंदनु वेदन, चौथा पांचवा गुणस्थान करता पण जेमने विशेष, विशेष एटले प्रचुर प्रकट्यु छे अधिक मात्रा में, एटले के अतीन्द्रिय आनंदनो स्वाद विशेष छे। किसकी बात है? मुदिराज की। एवा भावलिंगी साधु ने जो शुद्धोपयोगनो संबंध होय तो ते मुक्ति पामे, परंतु जो शुभ योग नो संबंध हो तो स्वर्ग पामे, पण तेमने अशुभ योग नो संबंध तो होय ज नहीं, एम कहे छे। कितना स्पष्ट बताया, और ये मूल गाथा में बताई, कुनकुंदाचार्य स्वयं बता रहे। और वो कौन निकले थे ना, ये किसी ने पुस्तक निकाली है, ये तो मोक्ष मार्ग पक्षा प्रकाशक की भूले,
प्रकाशक में जो लिखा है,
छठे गुणस्थान में अशुभ उपयोग होता है, और कारण क्या, वहाँ कुछ अशुभ प्रकृतियां बनती है। ये कोई है शैलेश नाम का सोनागिरी वाला, अपने को बहुत बड़ा पंडित समझता है।
उन्होंने एक पुस्तक छापी है,
पीताम्बर नहीं दिगंबर है,
उन्होंने
पहले क्या शुल्लक हुआ, फिर शुल्लकपना छोड़ दिया, ब्रह्मचारी था, फिर क्या सब ऐसा लफड़ेबाजी वाला है,
फिर शादी की,
फिर भी उसके फॉलोअर्स बहुत है, बहुत सारे मोबाइल लेके बैठता है, और फॉरेन में भी उसके आपको भी मालूम है। अच्छा, आप भी उसको फॉलो करते हैं
दर्शन करके?
अच्छा,
नहीं नहीं, उस व्यक्ति ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कितनी गलतियां हैं उसके एक पुस्तक छापी है।
यानी ऐसा लगता है ना उनको, कुछ बड़े आदमी की भूले दिखाएंगे तो ये बहुत बड़ा हो कहलाएगा, बहुत यानी जिसको कहेंगे कि समाज में। हाँ अरे फॉलोअर किसको नहीं है, सोनागिरी से करता है, उसके फॉलोअर्स ऑल ओवर है, फोन पर चलते हैं ना आजकल तो, मोबाइल तो अच्छा हुआ है ना, घर घर में आ गए सारे प्रवचन का, जिसको जो चाहिए वो। हाँ अभी चलो जो चल रहा है। यानी अशुभ उपयोग ने संबंध तो होय नहीं, उसकी दलील क्या थी मालूम है? बंध विच्छित्य आपको याद है? अभी किसको याद है, आपको याद है? छठे गुणस्थान में बंध विच्छित्य यानी जो बनती है छठे में और ऊपर नहीं बनती है, छह है, कौन सी?
अशुभ है सब,
अशुभ अस्थिर है, अशुभ है, असाता वेदनी, अयशस कीर्ति है, अरति है और शोक है। तो कहते ये अशुभ बनती है ना, तो उनके अशुभ उपयोग होते हैं। अरे तो ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी तो अशुभ ही प्रकृति है और दसवें तक बनती है, ये कोई दलील हुई? वही तो, वेद का उदय है, परंतु बंध भी तो सभी का चल रहा है ना, ज्ञानावरण इटसेल्फ सभी घाती कर्म तो अशुभ ही है और उसका दसवें तक बंध है। यानी मालूम नहीं है कर्णानियोग के कुछ नियम, और जो अपने मत कल्पना से कुछ कहते हैं और लोगों को कुछ पता नहीं, हाँ 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 सच्चा लगता है क्या? नहीं बात हम कहाँ पता पता ही नहीं, तो हम बिना गए थे वहां पर। बीना में गए थे ना, तभी हमको फोन आया, ऐसा ऐसा है वैसा वैसा है, हुकमचंद जी को भारिल जी को ये बताना। हमने आप स्वयं फोन करके बताओ, हम क्या उनके सेक्रेटरी है क्या? ये आपको जो बताना है वो स्वयं बताइए। मालूम नहीं, अभी हम जब प्रवचन के लिए हम तीन बार गए थे, हमारे शिविर में गए थे तब, पंचकल्याण की बात
आपके
नहीं।
आपके पांच मिनट लेता हूँ बोल के डेढ़ घंटा बात कर रहा था, और वो भी प्राइम टाइम हमारे लिए 12 से डेढ़ बजे तक
सोने का टाइम
तो वो बोला मैं अच्छा अच्छा भाई बोला अभी तुम बंद करो।
और उसका कोई फॉलोअर लेके आया था, मैं फिर फोन करूंगा, मैंने बिल्कुल नहीं करना, हम इंटरेस्ट
बिल्कुल मत करना कहा, हम आपसे बात भी नहीं करना चाहते, ऐसा डायरेक्ट में बोल गया, ऐसा फालतू आदमी है कुछ।
और उसके चपेट में आकर वहां इतने समाज में भी दुही जिसको कहेंगे, फोड़ते हैं जिसको, और गलत प्ररूपना तो चलती रहती है, अभ्यास है नहीं और कुछ उसमें आ जाते हैं चपेट में। वही तो कहे ना, जो रविंद्र जी को फॉलो करती थी उनको छोड़कर इनके पीछे चली, ऐसे यानी इतनी मूर्खता। चलो आगे, हाँ ये लिखा ना अशुभ उपयोग न संबंध तो हो या नहीं। अभी यहाँ मूल ग्रंथ में अभी कुंदकुंदाचार्य, अमृतचंद्राचार्य, जयसेन आचार्य, उनको पता नहीं था, वो इनसे से आना हो गया, ख्याल में आती है ना बात। मुनियों के तो या तो शुद्ध उपयोग होगा या शुभ उपयोग होगा, अशुभ उपयोग तो उनके होता ही नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तो उन्होंने के अपने मन से तो लिखी नहीं है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक कार जो पंडित टोडरमल जी है, उनका कर्णानियोग का कितना अभ्यास है, सारे समय ज्ञान चंद्रिका जीव कांड कर्म कांड लब्धि सार धवला सामने नहीं था तो फिर धवला का अर्थ जो है भाषित नहीं होता वो इसमें मिल जाता है, इतनी तो उनकी बुद्धि थी और इतना तो उनका अभ्यास था, तो बिना अभ्यास के उन्होंने लिखा होगा। हाँ देखो आगे पढ़ते, आम शास्त्र में आवे छे के छठे गुणस्थाने आर्त ध्यान होय छे, छता तेने अहीं गण्यू नथी, गौणपणे तेने अशुभ अशुभ भाव होय नहीं एम ज कह्युं छे। समझाणो काई? एने ओ आर्त ध्यान किस अपेक्षा से कहा है? वो छठे गुणस्थान वाला आर्त ध्यान थोड़े ही स्वच्छंदी मिथ्या दृष्टि जैसा आर्त ध्यान होगा, वो तो कौन सा कहाँ तक कौन से भाव हो सकते हैं उसकी यहाँ बात है। हाँ यानी जो कुछ दुख रूप परिणाम है वहां चिंतन में, अब थोड़े ही वो शरीर के बारे में चिंतन करते होगे, मुझे ऐसा है मुझे वैसा है, शरीर को मैं थोड़े ही मानते होगे, ना ही कौन कोई कुटुंब के प्रति उनके कुछ भाव है, तो हो सकता है कि जो कुछ आयतन है देवशास्त्र गुरु संबंधी जो कुछ उपसर्ग वगैरह जो होते हैं उस संबंधी अन्य के ऊपर उस संबंधी कोई एकाद विकल्प हो तो हो, ऐसा हो सकता, पर उसको अशुभ उपयोग नहीं कह सकते हम, ख्याल में है ना। अशुभ भाव चारित्र परिणाम साथे संपर्क विना नो होवाथी अत्यंत है ये छे। मुनिराजों की वाक्य है ना, संस्कृत में मूल लिखा है, ये लिखा है देखो, अथ चारित्र परिणाम संपर्क असंभवात अत्यंत हेयस्य अशुभ परिणामस्य फलम आलोचयति, संस्कृत में लिखा है ना, और फिर गाथा में वही बात बताएंगे। अभी हमें गाथा पहले पढ़ने पड़ी, पर टीका चालू कर दी उन्होंने, एक पैराग्राफ के बाद टीका है। अच्छा उसके एक पैराग्राफ पढ़ लेते, फल विचार है, एक पैराग्राफ पढ़ना बाकी है। देखो शुभ भाव तो है ये छे, देखो चारित्र परिणाम साथ संपर्क विना हुआ थे अत्यंत है ये छे, शुभ भाव तो है ये छे पण अशुभ उपयोग तो अत्यंत है ये छे, मुनि थईने पैसा उधरावे के पैसा ना, हाँ उसी का प्रवचन चल रहा, हेडिंग का प्रवचन चल रहा के पैसा ना खरणा करावे तो ते बधो अशुभ उपयोग अत्यंत है ये छे। भले कोई भी बहाना हो, मंदिर बंधाना हो या जो कुछ अन्य कार्य करना है, ये मुनि योग्य कार्य नहीं, वो श्रावक का कार्य है, वो मुनि का नहीं है, ते मुनिज नथी। अरे पैसा रखना क्या, उसके बोली करना, उसके लिए लोगों को उपदेश देना, ये उनका थोड़ी कार्य है, ते मुनिज नथी। समझानो काय, चारित्र परिणाम साथे जमा कर, उघरा नहीं करना, मुझे सब चंदा इकट्ठा कर, शब्द का अर्थ
ऐसा जो आपको,
नहीं नहीं नहीं, हम शब्द
रेज़ द फंड, दैट इज द राइट,
यानी एक्चुअली एक क्रियापद का अर्थ क्या है, उघराना का अर्थ क्या होता है, ये पूछ रहे हैं गुजराती, क्योंकि हर एक भाषा का अपना स्पेसिफिक शब्द होता है। यानी उसका हिसाब रखते हैं,
अपना टारगेट इतना है, इतना करने का है, अभी तो मुझे सब यही करते हैं, इतना ये टारगेट है 50 करोड़ का,
कौन क्या कर रहे उसके भी हमको पता नहीं है। चारित्र परिणाम साथे एटले के धर्म परिणत तो छे, तेनी साथे शुभ भाव अने शुद्ध भाव ने मेळव्या, पण हवे अहीं अशुभ भाव तो तेने होय ज नहीं तेम कहे छे, जे अत्यंत हेय छे एवा अशुभ परिणाम नु फळ विचारे छे। अब गाथा लेफ्ट साइड में 86 पेज पर, असुहोदयेन आदा कुणरो तिरियो भवीयणे रहियो, दुख सहस्ये हि सदा अभिद्युदोभमदियच्छन्तम्, अशुभोदयेन आत्मा कुनरः तिर्यग्भूत्वा नैरयिकः, दुख सहस्रैः सदा अभिद्रुतो भ्रमति अत्यन्तम्, अशुभोदये आत्मा पुनरतिर्यञ्चने नारकपणे नित्ये सहस्रदुःखे पीडित संसारमा अति अतिभमे। अभी अन्वयार्थ, अशुभोदयेन अशुभ उदय थी, यानी अशुभ का, नहीं नहीं, ये उसने उसने जो अशुभ उपयोग से उसका फल क्या मिल रहा है। अशुभ उपयोग तो मुख्यतः तो पहले 3 गुणस्थान में ही बताया है, पहले बता चुके हैं ना, घटता हुआ। हाँ तो कहते हैं कि अशुभ उदय थी, यानी पहले उसने बांधा है तभी तो उसका उदय होगा। अशुभ का फल क्या है, अशुभ उपयोग का फल बता रहे, फल कब मिलेगा, पहले किया है अशुभ उपयोग तो भविष्य में उसका फल मिलेगा, तो उसके फल में क्या मिलेगा ये कह रहे। तो अशुभ उदय थी आत्मा कुनर, यानी कुमनुष्य, कुभोग भूमि में जो जन्मते हैं ना उसको कुमनुष्य कहते हैं, अंतर्द्वीपच म्लेच्छ ऐसा भी उसका एक नाम है, क्योंकि जो लवण समुद्र है और कालोदी समुद्र में ऐसे कोई द्वीप है, जैसे जम्बूद्वीप के अटैच्ड और बाकी उधर दूसरा जो जम्बूद्वीप है, यहाँ फिर धातकी खंड है, धातकी खंड की ओर वाला लवण समुद्र और यहाँ वाला समुद्र, इन दोनों तट के पास 24 और 24 48 यहाँ हुए और कालोदधि में भी 24 और 24 48, ऐसे 96 द्वीप है जिसको कुभोग भूमि कहते हैं और वहाँ के मनुष्यों को कुमानुष कहते हैं, यानी एक कुभोग भूमि एक पल्ले की आयु होती है, और वहाँ जैसे विद्रूप ऐसे होते हैं ना, कोई प्राणियों के मुख वाले होते हैं, बाकी शरीर मनुष्य जैसा है, मारजार जैसा, हाथी जैसा, ऐसे लंबे कान वाले, एक टांग वाले, सींग वाले, पूंछ वाले, इस तरह से अलग अलग टाइप के होते हैं और वहाँ वहाँ की मिट्टी खाते हैं और गुफाओं में सोते, इस तरह से वो सब वहाँ का बहुत वर्णन है, हमने जैन भूगोल में देखा था, है ना। हाँ, और वहाँ जाने कौन जीव वहाँ जाते उसका भी विस्तार से हमने देखी थी बातें। अब यहाँ पढ़ते आगे देखो के अशुभ उदय थी आत्मा कुनर यानी कुमनुष्य हल्को मनुष्य, तिर्यक यानी तिर्यंच, नैरयिक यानी नारक, भूतवा यानी होकर थईने, दुख सहस्र ही हजारों दुखोपी, सदा अभिद्रुत सदा पीड़ित थतो अत्यंतम भ्रमती, संसार में अत्यंत भ्रमे छे, यानी वो भव तो फिर उसके आगे के भी भव इस तरह से उसका चल ही रहा है, मिथ्यात्व तो है ही है और अशुभ उपयोग के कारण ये इस तरह से उसका भ्रमण चलता है। कुभो भूमि में समय दर्शन नहीं होता और वो मरकर सारे भवनत्रिक में ही जाएगी सारे के सारे। हमने भोग भूमि की बात देखी थी, वहां के मिथ्या दृष्टि भवनत्रिक में और समय दृष्टि सौधर्म ईशान में, कुभोग भूमि वाले सारे ही वहां चले जाएंगे। अभी जो मुनि होकर भी जो शीतला चल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, वैसा वहां नहीं हो सकता, नरक में हो सकता है। कुभ नाम ही कुभोग भूमि है। हाँ, कुमनुष्यों की कुभोग भूमि, उसी को ही अंतर द्वीपज म्लेंच, द्वीपों में रहने वाले, अंतर द्वीप यानी समुद्रों में द्वीप है और वो द्वीप में रहने वाले वो म्लेंच, यानी वो तो हीन टाइप के मनुष्य बताए।
जैसे हमने देखा ये डाई द्वीप के बाद के जितने कुछ द्वीप हैं, कब तक के स्वयंभू रमन समुद्र के पहले
आधा द्वीप,
हाँ, तो वहाँ तक सारे भोग भूमिया है तिरंजों के लिए,
जगन्य भोग भूमि,
वही जगन्य भोग भूमि,
पर वो भोग भूमि है
तिरंजों की, वहाँ मनुष्य नहीं,
भोग भूमि है।
और यहाँ पर मनुष्यों की भोग भूमि है,
मनुष्यों की है परंतु को भोग
को मनुष्य है, ये सारे
वो मनुष्य सारे कहाँ पर तिरंजों को हो सकता है, तिरंजों को हो सकता है। भोग भूमि तो चौथे गुणस्थान तक जा सकते, कर्म भूमि वाले तिरंज पांचवें गुणस्थान प्राप्त कर सकते, भोग भूमि वाले मनुष्य हो या तिरंज चौथे गुणस्थान तक जा सकते। नहीं नहीं, अन्य भोग भूमिया ढाई द्वीप में है ना, भूल गए आप। देखो देखो, भोग भूमिया कहाँ पर है, जम्बू द्वीप में भी है ना, जो कांस्टेंट भोग भूमिया भी है, और भरत और ऐरावत में पहला दूसरा और तीसरा काल था तब यहाँ भोग भूमि थी, उत्तम मध्यम और जघन्य है ना, और बाकी कहीं कहीं तो कांस्टेंट भोग भूमि है, जैसे भरत क्षेत्र है, फिर पर्वत आएगा, उसके बाद जघन्य भोग भूमि, फिर पर्वत, फिर मध्यम भोग भूमि, फिर पर्वत, फिर वो सुमेरु के बाजू में ऊपर नीचे जो उत्तर दक्षिण की तरफ देवकुरु उत्तरकुरु जो है वो भोग भूमि है, उत्तम भोग भूमि है। ऐसे ही जो है रचना धातकी खंड में भी है, पुष्कर अर्ध में भी है, कुछ तो भोग भूमिया कांस्टेंट होती है, वो भोग भूमि अलग, और ये कौन सी है कुभोग भूमिया। ये समुद्रों में कुछ द्वीप ऐसे है कि जहाँ ये कुभोग भूमि के कुमनुष्य ही रहते हैं वहां पर, ख्याल में आई बात है। ये अशुभ तिरंज यानी तो पेकेंद्रीय को भी तिरंज कहेंगे, तो तिरंज तो पशु पक्षी वो भोग भूमि वाले वहाँ कुभोग भूमि उनके नहीं होते, कुमानुष्य ही कहते उसको, वहाँ तिरंज की बात नहीं आती है। और ऐसे साधु पना अंगीकार करके जो ये सब बातें चलती है ना, उसके फल में वहाँ जन्म लेते हैं, या जो साधु नहीं उनका साधुवत आदर करते हैं, जैसे उनको बहुत शिथिलाचार भी चल रहा है और फिर भी साधु करके उनके पीछे जाएंगे, आहार दान करेंगे, वो सब उसके फल में वहाँ चले जाते हैं, कुपात्र दान स्पेशली बताते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, ये तो बहुत विस्तार से त्रिलोक सार में तिलोय पन्नति में मूल गाथाओं में लिखा है, ख्याल में आई ना, ये आज की बात नहीं है, हजारों साल पहले लिखा हुआ है। देखो क्या कहते हैं टीका। जारे आ आत्मा जरापन धर्म परिणति ने नहीं प्राप्त करतो थको, जरापन यानी वो मिथ्या दृष्टि, हाँ, अशुभोपयोग परिणति ने अवलंबे छे, मिथ्या दृष्टि है, त्यारे ते कुमनुष्यपणे तिर्यंचपणे अने नारकपणे परिभ्रमण रूप हजारों दुखोना बंधने अनुभवे छे। तेथी चारित्रना लेशमात्रनो पण अभाव हुआथी आ अशुभोपयोग अत्यंत हेयज छे। आ रीते भगवान कुनकुंदाचार्य देव समस्त शुभाशुभोप एने शुभ और अशुभोपयोग वृत्ति ने एने शुभ उपयोग रूप अने अशुभ अशुभ गुण अशुभ हाँ पेज नंबर 88 अशुभ उपयोग रूप परिणति ने अपास्त करीने अपास्त करीने ने तिरस्कारीने शुद्धोपयोग वृत्ति ने आत्मसात करता थका एने आत्मरूप पोता रूप करता थका एने करते हुए शुद्धोपयोग अधिकार शुरू करे छे। वो तो 13 का हेडिंग होगा, अभी हमको अभी 12 का भी प्रवचन पढ़ना है। तो अभी अभी पहले हमको जयसेनाचार्य को पढ़ना है और जयसेनाचार्य के बाद टीका के ऊपर जो गुरुदेव ने प्रवचन किया उसको पढ़ना है। थोड़ा आगे पीछे आपको देखना पड़ेगा। अभी पेज 86 जयसेनाचार्य जी की टीका, हाँ सेंटर में बीच में दो लाइन के बीच में, अथ यानी अब चारित्र परिणाम असंभवात अत्यंत हेयस्य अशुभोपयोगस्य फलम दर्शयति। अने चारित्र परिणाम साथे जो असंभव है, ऊपर चारित्र परिणाम संपर्क असंभवात लिखा है, वो संपर्क कहाँ गया? अने चारित्र परिणाम किस साथ, इसका कोई संबंध नहीं है। परिणाम संपर्क असंभवात है ना, परिणाम उसमें क्या लिखा है? नहीं नहीं एक जैसे आचार्य ने लिखा है, पर हम देख लेते ना उनकी 12 नंबर की उसमें क्या लिखा है, हम देख लेंगे 12 असुहेना, उन्होंने वैसे लिखा है। तो चारित्र परिणाम असंभवत, ठीक है, यानी चारित्र परिणाम के साथ ये असंभव है, वो तो अमृतचंद्राचार्य ने लिखा, ठीक है, परंतु मुझे यही देखना था कि ऐसा ही लिखा है क्या, यानी चारित्र परिणाम वाले के अशुभोपयोग असंभव है, इसलिए वो अत्यंत और उसका फल क्या है वो भी बता रहे। अशुभोदयेन यानी अशुभोदयेन अशुभ के उदय से, अशुभ उदयेन अशुभ के उदय से, आदा यानी आत्मा, कुणरो नर यानी मनुष्य और कुणर यानी कुमनुष्य, कुणरो तिरियो यानी तिर्यंच भवीय होकर, नेरियो यानी नारकी, कुणर तिर्यक नारको भूतवा यानी कुमनुष्य तिर्यंच और नारकी होकर किम करोति क्या करता है, दुख सहस्य हिम सदा अभिद्युदो भमति अच्छन्तम, दुख सहस्र ही यानी हजारों दुखों से, सदा यानी हमेशा, सर्वकालम यानी सदा करता है सर्वकाल, अभिद्रुत कदर्थित पीड़ित ही सन, अभिद्रुत होना यानी उससे पीड़ित होना, संसारे अत्यंतम भ्रमति संसार में अत्यंत भ्रमण करता रहता है, तथा ही वह इस प्रकार है, निर्विकार शुद्धात्म तत्व रुचि रूप निश्चय सम्यक्त्वस्य, क्या कहते हैं निश्चय सम्यक्त्व कैसा है, निर्विकार शुद्धात्म तत्व की रुचि रूप जो निश्चय सम्यक्त्व है, और कैसे तत्रैव इन वहीं पर शुद्धात्मनि अविक्षिप्त चित्त वृत्ति रूप निश्चय चारित्रस्य च, यानी यह सम्यक्त्व निश्चय सम्यक्त्व और निश्चय चारित्र लिया, निश्चय चारित्र कैसा है, वहीं पर शुद्धात्मा में अविक्षिप्त यानी अविचलित यानी उससे विक्षेप नहीं है उसका, वहां से अस्थिरता नहीं है, बिल्कुल स्थिर है चित्त, उसमें स्थिर स्थिर चित्त वृत्ति रूप निश्चय चारित्रस्य च विलक्षणेन। पहले में पहले हमेशा जैसेन आचार्य की ये स्टाइल है, पद्धति है, ये विशेषता है, ये पहले शुद्ध की बात करते हैं। अभी मिथ्यात्व को अशुभ को भी बताना है तो पहले शुभ यानी शुद्ध क्या है वो बताएंगे, और उसके विपरीत, हाँ उसके विलक्षण है विपरीत लक्षण, और विपरीत अभिनिवेश जनकेन दृष्ट श्रुत अनुभूत पंचेन्द्रिय विषयाभिलाष तीव्र संक्लेश रूपेण च अशुभोपयोगेन यद उपार्जितम। यह अशुभोपयोग का वर्णन कर रहे हैं, पहले निश्चय समय दृष्टि है और फिर उसके निश्चय चारित्र भी है, है उससे जो विपरीत है उसके विपरीत लक्षण वाला, और विपरीत अभिनिवेश, अभिनिवेश ने अभिप्राय, उल्टा अभिप्राय, मिथ्या अभिप्राय, विपरीत अभिनिवेश जनकेन यानी विपरीत अभिप्राय से जो उत्पन्न हुआ है, और कैसा है कि दृष्ट यानी देखे हुए, श्रुत यानी सुने हुए, अनुभूत यानी पहले भोगे हुए, हाँ जाने हुए, ऐसे क्या है पंचेंद्रियों के विषय उसके अभिलाषा तीव्र संक्लेश रूपेण है, और उससे जो तीव्र संक्लेश रूप परिणत हुआ है ऐसा जो अशुभ उपयोग है, अशुभ उपयोग का इतना सारा वर्णन कर दिया, और उससे यद उपार्जितम अशुभ उपयोग से जो उन्होंने कमाया है, उपार्जित करने ने कमाना, ये हम धन उपार्जित करते हैं, इसने क्या उपार्जन किया है अशुभ उपयोग के द्वारा, पाप कर्म। हमें तो लगता है हम पैसा कमा रहे हैं, क्या कमा रहे हैं ये सब दृष्ट श्रुत अनुभूत, और ये पैसा भी किसके लिए, पंचेंद्रियों के विषय के लिए है ना, और वो कमाने के पीछे जो कुछ लोभ चल रहा है, कुछ मायाचारी चल रहा है, कितना तीव्र संक्लेश पड़ना है, तो उसमें उपार्जन किसका हो रहा है, इसको तो धन दिखता है और यहाँ पाप तो दिखता नहीं ना कमाया हुआ, तो उससे जो पाप कर्म कमाया है इकट्ठा किया है, तद उदय न उसके उदय से, वो तो उदय आने से रहा, कमाया है बांधा है तो उसका उदय तो आएगा, अयम आत्मा यह आत्मा सहज शुद्धात्मा आनंद एक लक्षण पारमार्थिक सुख विपरीत तेना। अभी डायरेक्ट दुख नहीं बताना है, वो दुख कैसे तो विपरीत है, किससे विपरीत है, पारमार्थिक सुख से उल्टा है, तो पारमार्थिक सुख कैसे है कि सहज शुद्धात्मा के आनंद एक लक्षण ऐसा जो पारमार्थिक सुख है उससे विपरीत ऐसा जो दुख है वो दुख से दुखित होकर, दुखे न दुखिता सन यानी दुख से दुखित होकर, स्व स्वभाव भावना च्युतो भूत्वा, स्व स्वभाव की भावना यानी उसमें एकाग्रता उसको जानना, उससे च्युत होकर यानी वो कभी समय दृष्टि था और च्युत हुआ ऐसा नहीं है, उसको जाना ही नहीं उसके, तो उसको उससे च्युत होकर कहेंगे संसारे यानी संसार में अत्यंतम भ्रमती अत्यंत भ्रमण करता है, इति तात्पर्य था, ये इसका तात्पर्य है। देखो आपका ये प्रश्न है, जरा सुनो आपका प्रश्न है अशुभ और शुभ का अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त है, परंतु यहाँ किसकी बात चल रही है, अज्ञानी की। हमने पहले देखा था कि पहले तीन गुणस्थान में घटता हुआ अशुभ उपयोग ही बताया है, वहाँ शुभ नहीं होता ये बात नहीं है, पर वो कैसा है वो उल्टी मान्यता सहित वाला है, उसको अशुभ ही गिना है, ये पहले बात हो चुकी थी। शुभोपयोग तो चौथे गुणस्थान से बताया है, चौथे पांचवे छठे में बढ़ता हुआ शुभोपयोग कहा, पहले दूसरे तीसरे में घटता हुआ अशुभोपयोग कहा, मिथ्या तो सहित वाला कोई भी उपयोग क्यों ना हो, कौन सा शुभ या अशुभ दोनों को अशुभ में गिना है,
गिना है क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो कैसा है करके। अभी आपने क्या बताया, घटता हुआ अशुभ उपयोग, इसका अर्थ पहले गुणस्थान में मैक्सिमम अशुभ उपयोग,
अशुभ उपयोग ही बताया,
और जो शुभ उपयोग उसका चल रहा है वो ऐसा मानते हैं कि मैं कर सकता हूँ, मिथ्यात्व सहित वाला,
मिथ्यात्व सहित उल्टी अभिप्राय है। अरे भगवान को भी नमस्कार करता है, पर भगवान का भी स्वरूप कहाँ उसने निश्चित किया है, भगवान का स्वरूप निश्चित हो जाता तो उसके समय दर्शन हो जाता। ख्याल में आती है ना, उसके लिए इतना तो शुभ कर रहा है, इतना दान दे रहा है, इतनी यात्रा की और इतना स्वाध्याय कर रहा है, जब तक मिथ्यात्व है तभी उसको उसको मुख्यता से अशुभ उपयोग ही गिना है, उसी की बात है यहाँ पर। और कुमानुष और ये तिरंच और नारकी कौन होगा? अभी जो अति तीव्र मिथ्या दृष्टि होगा तो चला जाएगा वहां पर।
आपका प्रश्न ऐसा था मनीषा बहन का कि आप एक बार बताते कि अंतर मुहूर्त में शुद्ध शुभोपयोग से अशुभोपयोग में जाता है,
हाँ।
और आप कहते हैं कि अशुभोपयोग ही उधर अधिक है, तो उसके शुभोपयोग का क्या हुआ, ऐसा प्रश्न है ना?
उसके तो बंद हो गए, देव का भी बंद होगा, जैसे शुभ प्रकृतियां भी कुछ बंदेगी, कौन सी साता वगैरह,
लेकिन
शुभ नाम
के साथ, हाँ। जो शुभ भाव आप कह रहे कि शुभ भाव आता है वो मिथ्यात्व के साथ का है, इसलिए उसको भी अशुभ कहने में आता है।
इसलिए पहले बता चुके हैं ना वो, हाँ, इसीलिए उसके कॉन्टेक्स्ट में लेना है हमको।
नहीं ठीक है, उनको नहीं मालूम हुआ तो हाँ,
नहीं और पूछना है ऐसा, क्योंकि एक होता है सूक्ष्म कथन, एक होता है किसी यानी मुख्यता से किसको कहा है, क्यों कहा है, उसकी यहाँ बताने का प्रयोजन क्या है, उसको देखना है, वो अत्यंत है ये बताना है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि स्वर्ग में नहीं जाते, ये थोड़ी बात है, मिथ्या दृष्टि भी जाएगी, जैसे आपने बताया आयु बंद के समय में उसका जैसा परिणाम होगा वो बात सही है सब, परंतु यहाँ तो ये क्यों भ्रमण कर रहा है ये बात बतानी थी। देखो हम यहाँ बता, एवं उपयोग त्रय फल कथन रूपेण चतुर्थ स्थले गाता द्वयम गतम, यानी इस तरह से तीन उपयोग के फल का कथन बताया, शुद्धोपयोग का फल मोक्ष बताया, शुभोपयोग का फल उन्होंने स्वर्ग सुख बताया, और अशुभ का वो तो कुनर और तिरंच और नारकी बताया। समझ में, वो उपादेय वो है ये और ये अत्यंत है ये। अब यहाँ 87 पेज पर ये टीका का जो प्रवचन है गुरुदेव का दूसरा पैराग्राफ वहां से पढ़ेंगे। जारे आ आत्मा जरापन धर्म परिणति ने नहीं प्राप्त करतो, यानी मिथ्या दृष्टि, हाँ हो गया था
तो पढ़ा,
वो टीका भी पढ़ी थी और 87 पर एक पैराग्राफ भी पढ़ा था, उसी के साथ पढ़ा था। जब हमने गाथा 12वीं की पढ़ी थी, 12 गाथा के बाद अन्वयार्थ पढ़ा था, अन्वयार्थ के बाद हमने वो नीचे की टीका पढ़ी थी, टीका के बाद 87 पेज देखा था और वहाँ एक पैराग्राफ पढ़ा था। नहीं, उसके बाद हमने जयसेन आचार्य को पढ़ा, अभी अमृतचंद्राचार्य टीका का गुरुदेव का प्रवचन, ये उल्टा सुलटा थोड़ा करेंगे ऐसा होगा। हाँ, हाँ, क्योंकि टीका ही चार लाइन की, तीन लाइन की है, तो गुरुदेव के प्रवचन ही दो पैराग्राफ में है। जारे आ आत्मा जरापन धर्म परिणति ने नहीं प्राप्त करतो, जोयू 11वीं गाथा मा धर्म परिणति सहित नी बात हती, जारे अही धर्म परिणत होय तेने अशुभ होय नहीं तेम कहे छे। जारे आ आत्मा जरापन धर्म परिणति ने नहीं प्राप्त करतो थको, अशुभोपयोग परिणति ने अवलंबे छे, ये महत्व के जरापन बात बताई ने, एटले के अशुभ भाव में ये जो जोड़ाय छे अर्थात धर्म परिणत तो नहीं, अने अशुभ ने जो अवलंबे छे त्यारे तो त्यारे ते कुमनुष्यपणे जशे, कुमनुष्यपणे अवतरशे। एने पहले वाला तो धर्म परिणत था, उसमें शुद्धोपयोग और शुभोपयोग लिया, अब ये धर्म परिणति से रहित जीव है और वो अशुभोपयोग में, आपके प्रश्न का ऐसा भी उत्तर देंगे, धर्म परिणत नहीं है तो शुभ में भी जाएगा, उसका थोड़ा सा फल भी मिलेगा, परंतु मुख्यता तो अशुभ की है, और अशुभ का वहां वो अत्यंत है ये बताने के लिए उसका फल ये कुनर वगैरह बताया। अशुभोपयोग परिणति ने अवलंबी है, एटले कि अशुभ भाव में ये जो जोड़ाय छे अर्थात धर्म परिणत तो नहीं, अने अशुभ ने जो अवलंबे छे त्यारे ते कुमनुष्यपणे जशे, કુમનુષ્યપણે અવતરશે, હલકા મનુષ્યપણામાં, નિર્ધનપણામાં ને એવા કુમનુષ્યમાં દુઃખી થઈને અવતરશે. હા હા, તિર્યંચપણે અર્થાત પશુ થશે, અશુભ પરિણામવાળો અને ધર્મપરિણતિ વિનાનો મરીને તિર્યંચ પશુ થશે. અબ તિર્યંચ મેં તો બહુ વેરાયટી હૈ. યહાં પર ભી એસે મ્લેંચ હૈ, મ્લેંચ હૈ, અન્ય ભી જો હૈ, યા જો હીન જાતિ કે હૈ, જહાં કોઈ ઉસકો ભી લે સકતે હૈ, પરંતુ યે મુખ્યતા ઉસકી લે ગી. યહાં ગુરુદેવ ને તો વહી લાયે હલકા મનુષ્ય, હલકે મનુષ્ય ને જહાં ધર્મ કી કોઈ બાત ભી સુનને કો નહીં મિલેગી. યહાં નિર્ધન ઓર યે કુમનુષ્ય એસે દોનો લીએ, તિર્યંચ પણે પશુ થશે. અભી કેવલ પશુ તો પંચેન્દ્રિય હો ગયે, અભી તિર્યંચ મેં તો નિગોદ ભી તિર્યંચ મેં આ ગયા, એકેન્દ્રિય ભી તિર્યંચ મેં આ ગયા, દ્વિન્દ્રિય તિન્દ્રિય સબ તિર્યંચ કી વેરાયટી બહોત હૈ. અશુભ પરિણામ વાળો અને ધર્મ પરિણતિ વિનાનો મરીને તિર્યંચ પશુ થશે. હા હા, જેને સમ્ય દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર નથી અને એકલા અશુભ ભાવ, આખો દી ધંધાના અશુભ ભાવ અને સ્ત્રી પુત્રને સાચવવાના એકલા અશુભ ભાવ છે, તે મરીને કહે છે કે કાં કુમનુષ્ય થશે, કાં પશુ થશે, આકરું કામ. અહીં અબજોપતિ કહેવાય ને ઉદ્યોગપતિ કહેવાય, પણ જો એકલા અશુભ પરિણામ છે, શુદ્ધ ધર્મ તો નથી પણ શુભ ઉપયોગ પણ નથી, તો હા હા દેખો ઉનકા જો શુભ ઉપયોગ એને કૈસા વાલા આપ કહેંગે ને, શુભ ઓર અશુભ તો હોતા રહેતા હૈ, કૈસા હૈ શુભ, કિસી કો થોડી મદદ કરના, શુભ ભી હોતે હૈ ના, ઉસમેં ભી વેરાયટી બહોત હૈ. જો સચ્ચે દેવગુરુ શાસ્ત્ર કે પ્રતિ ભક્તિ વાલા શુભ ઉપયોગ તો એસા જીવ હી નહીં લિયા યહાં પર. તો શુભ ઉપયોગ પણ નથી. સત્સમાગમમાં બે ચાર કલાક ગાળવા કે બે ચાર કલાક શાસ્ત્રો વાંચવા એવો શુભ ભાવ પણ નથી. ખ્યાલ મેં આવી બાત? આખો દી દુકાનના થડે બેસીને ધંધાના એકલા પાપ કરે છે, આ કર્યું ને આ કર્યું ને આ કર્યું ને આ કર્યું, તો તે અશુભ ઉપયોગ વાળો કુમનુષ્યપણે, તિર્યંચપણે અને નારકપણે પરિભ્રમણરૂપ હજારો દુઃખોના બંધને અનુભવે છે. એ હજારો એટલે અનંત દુઃખો, હું તો કહેતી ને અનંત કાલ કરોડો જીવો સે ભી કરોડો ભવો તક ઉસકા વર્ણન કરે તો ભી ઉસકા દુઃખ નહીં કહે સકતે. તેથી ચારિત્રના લેશ માત્રનો પણ અભાવ હોવાથી આ અશુભ ઉપયોગ અત્યંત હેય જ છે. અભી હો ગઈ 12 ગાથા ઉસકી ટીકા કા પ્રવચન. અભી 88 પેજ પર જો 13 નંબર કી ગાથા હૈ ના, હા ઉસકે ઉપર કી એક લાઇન ગુજરાતી મેં હમને નહીં પઢી થી. અભી હે ના શુદ્ધોપયોગ અધિકાર શરૂ કરે છે, તેમાં પ્રથમ શુદ્ધોપયોગના ફળને આત્માના પ્રોત્સાહન માટે પ્રશંસે છે. વો તો હમને પહેલા યહાં સે પઢા થા પીછે કે પેજ સે. એને 85 પેજ કે બાદ હમને 88 પર યે મથાળો પઢા થા. વો બાત થી ને કે સાચા સંત છે જેમને પ્રચુર સંવેદન છે અને તેઓ શુદ્ધોપયોગ વૃત્તિને આત્મસાત કરતા થકા શુદ્ધોપયોગ અધિકાર શરૂ કરે છે, યે બાત આઈ થી. અબ હમ સંસ્કૃત પઢેંગે તો ઉસકા અર્થ ભી સમજ મેં આયે કહાં લિખા હૈ. ઇસી પેજ પર પહેલી લાઇન ઉપર ગાથા કે ઉપર એવમ એની ઇસ તરહ અયમ અપાસ્ત સમસ્ત શુભાશુભોપયોગ વૃત્તિ હૈ, એને જીસકે સભી શુભ ઓર અશુભ ઉપયોગ કો અપાસ્ત કિયા હૈ, બાત આઈ ના, તિરસ્કાર કરકે. શુદ્ધોપયોગ વૃત્તિમ આત્મસાત કુરવાના, શુદ્ધોપયોગ વૃત્તિને આત્મસાત કરતે હુએ શુદ્ધોપયોગ અધિકારમ આરભતે, શુદ્ધોપયોગ અધિકાર શરૂ કરતે. વો ગુજરાતી મેં યહી લિખા હૈ ને, તત્ર વહાં પર શુદ્ધોપયોગ ફલમ आत्मनः प्रोत्साहनार्थम अभिष्टौती, यानी शुद्धोपयोग उसका फल जो है आत्मा के प्रोत्साहन के लिए उसको प्रशंसा करते उसकी। थोड़ा नहीं, उतना ही वैसा ही है।
आपने एवं अयम, तो एवं अयम
वो पहले 85 पेज पर है।
85 पेज पर
नहीं नहीं देखो 86 पर टीका के तीन लाइन है ना अमृतचंद्राचार्य की, भाषांतर भाषांतर गुजराती अनुवाद के नीचे की तीन लाइन, हाँ उसकी चौथी लाइन आ रीते आ रीते ने एवं, हाँ समस्त शुभा शुभोपयोग वृत्ति ने अने शुभ उपयोग रूप अने अशुभ उपयोग रूप परिणति ने अपास्त करी ने, है ना वो इसका ट्रांसलेशन है। अभी इतना कि इतने अलग अलग वो पहले क्विज आते हैं ना कहाँ क्या है ढूंढो करके उसी का ये ट्रांसलेशन हमने पढ़ा। अभी हमको 13 नंबर की गाथा पढ़नी है, गाथा फिर तो उसका गुजराती फिर अनुयात फिर टीका फिर जयसेनाचार्य, इस तरह से पढ़ेंगे हम। अभी है थोड़ा टाइम।
ऐसयमाद समुत्थम विषयातीदम अणवमणन्तम् अवच्छिन्नं च सुहं शुद्धोगप्पसिद्धानम् अतिशयमात्मसमुत्थम् विषयातीतमनौपम्यनन्तम् अव्युच्छिन्नं च सुखं शुद्धोपयोगप्रसिद्धानम् अत्यंत आत्मोत्पन्न विषया तीतानुपनन्तने विच्छेद हीनचे सुख अहो शुद्धोपयोग प्रसीदने।
जैसे इंद्रिय सुख का इसके उल्टा हमने सारा वर्णन देखा था कैसा कैसा होता है, तो अभी अन्वयार्थ शुद्धोपयोग प्रसिद्धानाम शुद्धोपयोग थी निष्पन्न थेला आत्माओनु, यानी शुद्धोपयोग थी कौन से निष्पन्न हुए उत्पन्न हुए तो केवल ज्ञान केवली भगवंतोनु अने सिद्ध भगवंतोनु सुखम एटले सुख अतिशयम, वो कैसा है सुख तो अतिशय सुख है। आत्मसमुत्थम आत्मोत्पन्न है, आत्मा से उत्पन्न हुआ है। विषयातीतम विषयातीत है यानी विषयों से पार यानी अतीन्द्रिय, विषयों से उत्पन्न नहीं है आत्मा से अतीन्द्रिय। अनुपम्यम अनुपम है, उसकी किसी की उपमा नहीं दे सकते उस सुख को उपमा विनानु। अनंतम अनंत है और कैसा है अविच्छिन्नम च अने अविच्छिन्न ने अतूटक छे, जो इंद्रिय सुख कैसा है विच्छिन्न होता है कर्म के उदय के अनुसार होता है और उसमें क्या क्या बाधा आती है वगैरह वगैरह बहुत सारे विशेषण हमने देखे और हमें अनुभव किए हैं इंद्रिय सुख कैसा होता है वो। फिर गुजराती पढ़ती हूँ मैं। शुद्धोपयोग थी निष्पन्न थेला आत्मा उन्होंने केवली भगवंतोनु सिद्ध भगवंतोनु सुख अतिशय आत्मोत्पन्न अतीन्द्रिय अनुपम अनंत अने अविच्छिन्न छे, सभी अ अ अ है। ताराबेन कल याद करके आना कैसा है वो अतिशय आत्मोत्पन्न अतीन्द्रिय अनुपम अनंत और अविच्छिन्न, कितने हुए पांच नहीं छह हुए। देखो अतिशय आत्मोत्पन्न और अतीन्द्रिय फिर अनुपम अनंत और अविच्छिन्न, ये छह विशेषण लगाए उन्होंने। हाँ उनको बाकी सबको याद हो गया। मनीषा बहन आप देख के बताओ। बहुत अच्छा। हाँ अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय हाँ हाँ, अनंत अविच्छिन्न है ना। देखो यानी थोड़ा याद करने की यानी कितनी बातें हैं ना इसके अंदर। हाँ टीका,
एक एक मिनट, हमें अपनी जो बुद्धि है उसमें याद करने की हम कोशिश करेंगे तो कौन सी बीमारी नहीं होती हो?
वो अल्जाइमर नहीं होगा। हाँ रीजन क्योंकि आपके बुद्धि को जंग लग जाता है, नहीं समझे कुछ उसे उसको फ्रेश नहीं रखते ना।
अरे हाँ। पर उनको कहना है कि मैं तो अमिताभ बच्चन बनता हूँ तो तुमको क्या तकलीफ है। ब्लैक
आपको कोई मशीन भी है और ज्यादा दिन नहीं वो आप यूज करो तो क्या होता है? अरे चलता नहीं है। अरे कार हो या स्विंग मशीन हो, हमारे कंप्यूटर भी बाहर काम जाते तो उसके मेमोरी कार्ड फिर ये करना पड़ता है उसका, होता है कि नहीं है? मशीनरी में भी हो जाता है तो ये दिमाग की मशीनरी ऐसी आउट ऑफ डेट हो जाती है।
और सर हमेशा संस्कृत में रूप याद करने को बोलते हैं, करो करो आपको ये रूप में।
और ये साइंस वालों ने बताया हुआ है तो साइंस के बाद जल्दी एक्सेप्ट होती है ना, इसलिए बता रहे हमको। क्या हुआ बेटा? देखो नई नई चीजें हम याद यानी हम अटेंटिव होते हैं ना, उपयोग उसमें लगता है अपना, उसमें अपना उपयोग लगता है। और क्योंकि मन का कार्य क्या है, याद रखना ही मन का कार्य है तो मन को हम इन एक्शन रखते हैं, उसको एक्टिव रखते हैं। एक्टिव नहीं रखेगा तो क्या है वो मन यानी वो पुरानी बातें सब याद आती है उनको, जिसको अल्जाइमर होता है स्मृति भ्रंश होता है उसको क्या है वर्तमान के आपस ये बातें कुछ याद नहीं रहती, खाना खाया कि नहीं ये भी भूल जाते, पर बचपन की वो पुरानी सभी बातें उनको इतनी फ्रेश आ जाती कि अभी भी हो रही है इस तरह से।
हम जबलपुर गए थे, वहाँ अभय कुमार जी के बड़े भाई का पोती यानी लड़के की लड़की, वो कितने हार्डली एक साल की होगी या दो
साल की, डेढ़ दो साल की
जो भी है, 14 गुणस्थान
बराबर। अरे कितना उसका इतना। हाँ हाँ बहुत सारी बातें याद की शास्त्र की पूजाओं की, बहुत
मच। हम भी हैरान हो जाते कि ये लड़की को कितनी बातें करते, ये माँ बाप खास करके उसकी माँ बहुत अच्छी तरह से उससे सब बराबर ऐसा एक्शन वगैरह करा कर उसको याद कराती, और वो बस एक चाल
याद शक्ति तो होती है बच्चों की ज्यादा, मगर माँ बाप को तो बाकी रुचि इधर उधर की होती है तो बच्चे अरे लेके आए या नहीं है अभी के वर्तमान के उसका कार्य है कि नहीं। पूर्वभो का केवल संस्कार से नहीं बातें चलती, पूर्वभो का हो या नहीं हो वर्तमान में उसका उपयोग उसमें चल रहा है तभी तो होता है वो, उस फिर हम कहेंगे संस्कार। चलो अभी रुकना पड़ेगा फिर, ये कल हम टीका पढ़ेंगे, टीका से पढ़ना है पेज 88। हाँ छह के नाम बता दो बेटा, अभी आपने बता दिए नलिन भाई का नंबर है, अतिशय आत्मोत्पन्न अतीन्द्रिय अनुपम अनंत अविच्छिन्न, अभी आपका नंबर बोलो बोलो। हाँ अतीन्द्रिय पहले आत्मोत्पन्न फिर अनंत और अविच्छिन्न, अरविंद भाई कहेंगे। पहले अनंत फिर अविच्छिन्न, बहुत अच्छा अब यही रुकेंगे हम। अच्छा अच्छा अरे वहाँ बोलो बोलो बोलो, आपको पूछा ही नहीं। अतिशय आत्मोत्पन्न अतीन्द्रिय अनुपम अनंत अविच्छिन्न, बहुत अच्छा। आपके हाथ में तो पुस्तक भी नहीं फिर भी अच्छा है।
हाँ।
अच्छा हाँ रुकेंगे अभी। चावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो अरविंद
नमो अरियंता नमो सिद्धानं नमो आयुर्वेदं नमो विद्यानं नमो लोये सत्यसारं